ये आकाशवाणी है। अब आप देवेंद्र त्रिपाठी से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अफ्रीका को केवल कच्चे माल के स्रोत के रूप में नहीं बल्कि मूल्य सृजन और सतत विकास में अग्रणी भूमिका निभाने वाले महाद्वीप के रूप में देखा जाना चाहिए। नामीबिया की संसद को संबोधन में प्रधानमंत्री ने अफ्रीकी संघ का एजेंडा 2063 विशेष रूप से इसके औद्योगिकरण लक्ष्यों के प्रति भारत के दृढ़ समर्थन को दोहराया। श्री मोदी ने रक्षा और सुरक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
Our goal is to build together, not to take, but to grow together. Our development partnership in Africa is worth over $12 billion, but its real value is in shared growth and shared purpose. We continue to build local skills, create local jobs, and support local innovation. We believe that Africa must not be just a source of raw materials. Africa must lead in value creation and sustainable growth.
भारत और नामीबिया के बीच प्रगाढ़ ऐतिहासिक संबंधों को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये मित्रता समय की कसौटी पर खरी उतरी है। उन्होंने कहा कि दोनों देश न केवल अपने अतीत को संजो रहे हैं बल्कि अपने साझा भविष्य की पूरी क्षमता को साकार करने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत के लोग नामीबिया के मुक्ति संग्राम में गर्व से उनके साथ खड़े रहे।
The people of India stood proudly with Namibia. During your liberation struggle, even before our own independence, India raised the issue of Southwest Africa at the United Nations. We supported SWAPO in your quest for freedom. New Delhi hosted their first ever diplomatic office abroad.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा के अंतिम चरण में भारत और नामीबिया ने प्रधानमंत्री की मौजूदगी में नामीबिया में उद्यमिता विकास केंद्र की स्थापना और स्वास्थ्य तथा चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रांची में 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के 70 प्रतिनिधि भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एनबीएफसी से रिजर्व बैंक के ऋण वसूली मानदंडों का कड़ाई से पालन करने को कहा है। उन्होंने कहा कि एनबीएफसी को शासन जोखिम प्रबंधन और ग्राहक संरक्षण को अपनी मूल मान्यताओं और नैतिकता के अंग के रूप में एकीकृत करने की आवश्यकता है। नई दिल्ली में एनबीएफसी संगोष्ठी में वित्त मंत्री ने कहा कि जैसे जैसे एनबीएफसी मॉडल परिपक्व होता है जोखिम प्रबंधन पर उतना ही अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने जन शिकायतों के समाधान के तरीके में आमूलचूल परिवर्तन का आह्वान किया है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि शिकायत निवारण केवल निपटान तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नागरिक भी समाधान से संतुष्ट हों। अमरीका ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की विशेष दूत फ्रांसिस्का अल्बनीज पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमरीकी और इजरायली अधिकारियों, कंपनियों और कार्यपालकों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय को कार्रवाई के लिए प्रेरित करने के अनुचित और शर्मनाक प्रयासों के लिए यह फैसला लिया गया। विदेश मंत्री ने गाजा में इसराइल की सैन्य कार्रवाइयों की मुखर आलोचक पर आरोप लगाया कि अल्बनीज संयुक्त राष्ट्र में अपनी भूमिका निभाने के योग्य नहीं है। अमेरिका ने श्रीलंका से आयात पर प्रस्तावित टैरिफ में संशोधन किया है और 44% कर को घटाकर 30% कर दिया है। ये टैरिफ 1 अगस्त से प्रभावी होगा। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी तेज बारिश हो सकती है। स्पेन में मैड्रिड तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में भारत का पदक सुनिश्चित हो गया है। महिलाओं की कंपाउंड टीम स्पर्धा के सेमीफाइनल में कल भारत की ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रतिका प्रदीप और परनीत कौर की टीम ने इंडोनेशिया को 226 के मुकाबले 230 अंक से हराया। पुरुषों के क्रिकेट में आज लॉर्ड्स में एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी श्रृंखला के तीसरे मैच में भारत और मेजबान इंग्लैंड आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।